SBS हिंदी सेवा के सभी सुनने वालों को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। 5 राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने रविवार को नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक की। बैठक में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्रियों और चुनावों में जा रहे राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के प्रदेश अध्यक्षों और मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने बताया,
आज के इस कार्यकारिणी का समापन संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन।
5 राज्यों में चुनावों की तैयारी के बारे में भी श्री यादव ने जानकारी दी।
जनता से जुड़ने के लिए, विभिन्न विषयों को उनके बीच में ले जाने के लिए, विभिन्न वर्गों के साथ समन्वय बनाने के लिए पार्टी की जो योजनाएं विभिन्न भिन्न राज्यों में बनाई गई है उनका पूरा व्रत वहां के प्रदेश अध्यक्षों ने दिया। इन चारों राज्यों के अलावा पंजाब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस तैयारी के साथ सारे विषयों को वहां पर रखा गया।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चीन के भारतीय सीमा में बढ़ते अतिक्रमण पर चुप्पी तोड़ने को कहा।
इस हफ्ते पेंटागन की जो एक वार्षिक रिपोर्ट है उसमें दोहराया गया है कि गांव बना दिए गए हैं LAC के पास। एक गांव तो ऐसा है जो 4.5 किलोमीटर हमारे क्षेत्र में, हमारी सीमा के भीतर घुसकर अरुणाचल प्रदेश में चीन ने बनाया है। वहाँ 101 घर हैं, कुछ बहुमंजिला इमारतें हैं। रिहायशी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सैन्य उपयोग में भी लाया जा सकता है। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। ये पहले भी यह विषय भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद उठा चुके हैं, उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब पेंटागन भी वही बात दोहरा रही है। तो हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी इस पे उत्तर दें और जो क्लीन चिट उन्होंने चीन को 17 महीने पहले दी थी वो क्लीन चिट वापस लें, देश से माफी मांगे।
अमेरिकी कांग्रेस की एक ताज़ा रिपोर्ट ने भी तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में स्थित चुंबी घाटी में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जाहिर की है। चुंबी घाटी में दखल से भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर चीन की मारक क्षमता की जद में आ जाता है। पश्चिमी बंगाल में स्थित यह कॉरिडोर भारत को उत्तर पूर्व के 7 राज्यों से जुड़ने का एकमात्र ज़मीनी रास्ता है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तरी भारत के कई राज्यों को बीते कुछ दिनों से भीषण प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण का प्रकोप दीपावली की शाम से शुरू हुआ जब सरकार की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए लोगों ने बड़े पैमाने पर आतिशबाजी जलाई। अगले ही दिन दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और गाज़ियाबाद के अधिकांश इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा पराली जलाए जाने से प्रदूषण स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पर्यावरणविद विमलेंदु झा के अनुसार इस बारे में सरकारों को जल्दी ही संज्ञान लेना चाहिए।
As I said, I think we will have to control and look at in immediate periphery of Delhi NCR the kind of coal thermal power plants that we have almost 100 of them, in like 300 kilometer radius. In the sense, all of that will have to be taken. Measures have to be taken. Of course, sprinkling of water at construction sites. Perhaps right now, for at least for the next 1 week, if construction and demolition activities needs to be completely banned, because all these sources collectively together add up and create the ambient air quality or bad ambient air quality that we all are breathing right now.
इस बारे में दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की पेशकश की है।
जो पटाखे का प्रदूषण है वो तो धीरे धीरे डाउन जा रहा है, लेकिन जो पराली जलने की घटनाएं हैं वो जब तक नहीं रुकती हैं तब तक जो है दिल्ली के ऊपर जो ये प्रदूषण का खतरा है बना रहेगा। इसलिए आज अभी हम केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि तत्काल एक इमरजेंसी मीटिंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बुलाई जाए और तत्काल इसको कैसे रोका जा सकता है इसके इमरजेंसी मेजर्स को जो है तत्काल डिसाइड करके और उसको एक्ट किया जाए, जिससे कि उस प्रदूषण के स्तर को पराली की वजह से जो बढ़ रहा है उसको रोका जा सके।
केंद्र और भाजपा शासित राज्यों द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने के बाद पंजाब पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने वाला पहला कांग्रेस शासित राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री चरणदीप सिंह चन्नी ने केंद्र की भाजपा सरकार को बढ़ी कीमतों के लिए जिम्मेदार बताते हुए पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 5 रुपये की छूट का ऐलान किया।
एक बहुत बड़ी खुशखबरी पंजाब के लोगों नूं देण जा रहे हैं, जिदे नाल हर वर्ग के हर बंदे नूं फायदा होना है। पेट्रोल दे रेट ते डीजल दे रेट जदों दी बीजेपी सरकार आई है बहुत वड्डे मार्जन दे नाल वधे है। पंजाब दे फाइनांस मिनिस्टर साहब का मैं धन्यवादी हाँ, पंजाब सरकार ने अज वड्डा फैसला लेके पेट्रोल दे रेट असी 10 रुपये घट कर रहे हैं अज ही रात तो 10 रुपये, 5 रुपये डीजल दे रेट अज तो ही रात तो असी घट कर देंगे, जेड़ा के पिछले 70 साल दे विच कदे मैं सुनया नहीं कि इन्ना रेट भी कदे घटिया होए या कदे इन्ना रेट बढ़िया हो।
कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग केस अब पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंग गया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने रविवार को आरोप का नया दौर शुरू करते हुए कहा कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का फिरौती के लिए अपहरण किया गया था, लेकिन एक सेल्फी की वजह से उसका खुलासा हो गया। उन्होंने भाजपा नेता मोहित कम्बोज पर अपहरण की साजिश का आरोप लगाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को भी साजिश का हिस्सा बताया।
ये जो पूरा मामला है कॉर्डेलिया क्रूज का ड्रग कांड का ये फर्जी है। सीधे बताना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कम्बोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहाँ आर्यन खान को पहुँचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। ये सच्चाई है, किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कम्बोज है। उगाही के खेल में मोहित कम्बोज ये वानखेड़े का साथी है।
श्री मलिक पर पलटवार करते हुए श्री कम्बोज ने न केवल आरोपों का खंडन किया बल्कि श्री मलिक द्वारा उनके लगाए आरोपों को स्वीकार करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है कि क्रूज पार्टी का आयोजक काशिफ खान मंत्री असलम शेख को पार्टी में आने को बार बार कह रहा था।
ऐसा कौन सा गठबंधन और उनका रिश्ता था कि एक ड्रग पेडलर और एक ड्रग माफिया और एक ड्रगिस्ट जिसके ऊपर आरोप नवाब मलिक जी लगा रहे थे कि ड्रग का सबसे बड़ा किनपिन काशिफ खान है और उसका मियां असलम शेख के साथ भी इतना गहरा रिश्ता है कि उसको बार बार वो पार्टी में बुलाता था।
ड्रग्स केस की जांच श्री वानखेड़े से ले लिए जाने के बाद अब एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आर्यन खान को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया है। और आइए अब सुनते हैं खेल समाचार। न्यूजीलैंड की अफगानिस्तान पर जीत के साथ ही भारत T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। सेमीफाइनल में प्रवेश पाने के लिए भारतीय आशाएं अफगानिस्तान की जीत पर टिकी हुई थी, मगर न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान के 8 विकेट पर 124 रनों के लक्ष्य को 11 गेंदें शेष रहते मात्र 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस तरह न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त देकर भारतीय आशाओं पर पानी फेर दिया। आज अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला नामीबिया से होगा। यह विराट कोहली का T20 कप्तान के रूप में आखिरी मैच है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। SBS हिंदी सेवा की ओर से आप सबको मनन कुमार का नमस्कार।